कश्मीर रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने बरसाती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया निर्धारित। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह कल काठमांडू स्थित यूरोपीय संघ के राजदूतों और मिशन प्रमुखों के साथ संयुक्त रूप में करेंगे विचार विमर्श। पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देववा दंपति को गिरफ्तार न करने का सर्वोच्च अदालत ने दिया अंतरिम आदेश। सार्वजनिक सेवा को घर घर पहुंचाने के लिए हुलाक सेवा शुरू की गई। कुरियर सेवा का 60 जिलों में हुआ विस्तार। और अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों में चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए मार्गशीर्ष में तैयार होने वाले बरसाती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने मोटे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,660 रूपये प्रति क्विंटल और मध्यम धान का 3,860 रूपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी कि बैठक ने सहकारी क्षेत्र में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग 2082 की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भी फैसला किया गया। बैठक ने नेपाल चीन विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना चिली में केरोंग के क्रियान्वयन के लिए चीन सरकार को भेजे जाने वाले प्रत्युत्तर पत्र को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक पद पर सहसचिव मुकेश डंगुल को नियुक्त करने का निर्णय भी बैठक ने किया है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह कल यहां यूरोपीय संघ यानी ईयू से जुड़े देशों के गैर आवासीय राजदूतों और मिशन प्रमुखों के साथ सामूहिक बैठक और संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में सुबह 11:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न द्विपक्षीय और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री शाह की प्रेस तथा अनुसंधान विशेषज्ञ दीपा दाहाल के अनुसार बैठक के दौरान नेपाल की वर्तमान प्राथमिकताओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा आपसी सहकार्य के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले गत चैत 25 गते प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल में कार्यरत विभिन्न देशों के राजदूतों और कूटनैतिक मिशनों के प्रमुखों के साथ भी सामूहिक संवाद किया था। सरकार की सरकारी कुरियर सेवा का अब देश के 60 जिलों तक विस्तार हो चुका है। हुलाक सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई इस सेवा का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर घर तक पहुंचाना है। इस सेवा के तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि इससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की बाध्यता कम हो रही है। विभाग के अनुसार अब तक 28,000 से अधिक पासपोर्ट और 4,70,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कार्यालयों तक भेजे जा चुके हैं, जबकि कई दस्तावेज सीधे सेवाग्राहियों के घर तक भी पहुंचाए गए हैं। नेपाली कांग्रेस ने क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया को सहज और तेज बनाने के लिए केन्द्रीय पदाधिकारियों और केन्द्रीय सदस्यों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा की उपस्थिति में हुई सदस्यता व्यवस्थापन केंद्रीय समिति की बैठक ने सातों प्रदेशों में निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदारी तय की। बैठक ने 15वें महाधिवेशन की तैयारी के तहत नई सक्रिय सदस्यता वितरण तथा पहले नवीकरण से वंचित सदस्यों की सदस्यता को आगामी जेठ 21 गते तक केन्द्रीय प्रणाली में अद्यावधिक करने का भी निर्णय लिया है। सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देववा दंपति की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार के नाम अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायाधीशों महेश शर्मा पौडेल और नित्यानंद पांडेय की संयुक्त इजलास ने आज ये आदेश जारी किया। अदालत ने कहा है कि देववा दंपति के खिलाफ विशेष अदालत के बजाय काठमांडू जिला अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, इसलिए उसी वारंट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने कहा है कि यौनजन्य हिंसा से पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने तथा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए सरकार नीतिगत सुधार आगे बढ़ा रही है। सिंह दरबार में हुई कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की बैठक में मंत्री गौतम ने डिजिटल न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध नियंत्रण के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में सांसदों ने गरीब समुदायों के लिए न्याय की पहुंच बढ़ाने, एआई के दुरुपयोग पर नियंत्रण तथा सभी जिलों और प्रदेशों में न्यायिक सेवाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की बैठक में सांसदों ने कहा है कि होल्डिंग सेंटर में प्रभावित लोगों को सम्मानजनक जीवन में पुनर्स्थापित करना राज्य की जिम्मेदारी है। सिंह दरबार में आज हुई बैठक में सांसदों ने होल्डिंग सेंटर में रह रहे नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और अनाथ तथा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक होने पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि गोपनीयता की कमी और दैनिक जीवन की अनिश्चितता के कारण प्रभावित लोगों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। बैठक में दीर्घ रोगी, बीमार और सुतकेरी प्रसूता महिलाओं के लिए दवा और पौष्टिक भोजन की कमी तथा कुछ लोगों पर मानसिक असर पड़ने की जानकारी भी दी गई। प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक में सांसदों ने देश का कुल बेरुजू यानी अनियमित व्यय 7,55,00,000,000,000 रुपए पहुंचने पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके निपटारे के लिए सभी पक्षों को गंभीर बनने की आवश्यकता बताई है। आज हुई बैठक में सांसदों ने कहा कि कानून के पालन, आर्थिक पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण अनियमित व्यय निराकरण की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। उन्होंने सरकार से नीतिगत समस्याओं, आवश्यक कानूनी संशोधनों और जिम्मेदार निकायों की स्पष्ट पहचान सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की मांग की। बैठक में विभिन्न 10 मंत्रालयों के सचिव और सह सचिवों ने महालेखा परीक्षक की 63वीं प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमित व्यय की स्थिति और इसके निपटारे के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नीतिगत समस्याएं, स्वायत्त निकायों की जवाबदेही की कमी और संघ से प्रदेश और स्थानीय तह में हस्तांतरित पुराने निकायों में भी अनियमित व्यय निराकरण की समस्या बनी हुई है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाएं सरकार की उच्च प्राथमिकता में हैं। कुलेखानी जलविद्युत परियोजना के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि नेपाल की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आर्थिक रूपांतरण के लिए अब जलाशययुक्त परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाना आवश्यक है। मंत्री श्रेष्ठ ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में सरकार का मुख्य ध्यान जलाशययुक्त परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं केवल बिजली उत्पादन ही नहीं बल्कि जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई विस्तार और पर्यटन प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण आधार बनेंगी। कुलेखानी के तीनों जलविद्युत केंद्रों के कर्मचारियों के साथ चर्चा करते हुए मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते प्राकृतिक जोखिमों के कारण भविष्य के लिए जल भंडारण संरचनाओं का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलाशययुक्त परियोजनाओं का कोई विकल्प नहीं है। जिला समन्वय समिति भक्तपुर के प्रमुख ईश्वर बहादुर थापा का आज दोपहर निधन हो गया। रेडियो नेपाल के पूर्व कर्मचारी भी रहे थापा का उपचार के दौरान काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ। सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता रविन्द्र सापकोटा के अनुसार थापा पिछले 2 सप्ताह से हृदय और उच्च रक्तचाप संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में उपचाररत थे। सिद्धार्थ राजमार्ग के अंतर्गत बुटबल पालपा सड़क खंड में निर्माणाधीन सुरंग मार्ग को आगामी आश्विन से संचालन में लाने के लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। परियोजना के अनुसार सुरंग मार्ग की 68% भौतिक और 58% वित्तीय प्रगति हो चुकी है। परियोजना प्रमुख राजेश पोडल ने बताया कि आश्विन तक यातायात संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती चरण में कानूनी और तकनीकी जटिलताओं के कारण निर्माण में देरी हुई थी लेकिन अब समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सुरंग के साथ पहुंच सड़क, सुरक्षा व्यवस्था और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग निर्माण का काम भी जारी है। करीब 10 अरब रुपए अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का ठेका प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से लगभग 7 अरब रुपए में दिया गया है। इस सुरंग का उद्देश्य भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज राजधानी बीजिंग में मुलाकात की है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक इससे पहले शहबाज शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की ओर से जारी एक वीडियो में शहबाज शरीफ चीनी नेताओं से बात करते दिखते हैं। इसमें वो कहते हैं कि खाड़ी संकट के कारण दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लिए ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इसहाक डार के साथ मिलकर ईरानी, अमेरिकी और खाड़ी देशों के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि खाड़ी संकट को खत्म करने के लिए सही दिशा में प्रगति हो रही है। उन्होंने शांति प्रयासों और युद्ध विराम पहल का समर्थन करने के लिए चीन नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बरसाती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया निर्धारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कल काठमांडू स्थित यूरोपीय संघ के राजदूतों और मिशन प्रमुखों के साथ संयुक्त रूप में करेंगे विचार विमर्श। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा दंपति को गिरफ्तार न करने का सर्वोच्च अदालत ने दिया अंतरिम आदेश। सार्वजनिक सेवा को घर घर पहुंचाने के लिए हुलाक सेवा द्वारा शुरू की गई कुरियर सेवा का 60 जिलों में हुआ विस्तार और अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों में चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।